वह श्लोक है।
जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभिः, जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभिः, यद्यस्य न भवे स्तंभस् यद्यस्य न भवे स्तंभस् तत्रायं मदनुग्रहः तत्रायं मदनुग्रहः। जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभिः, यद्यस्य न भवे स्तंभस् तत्रायं मदनुग्रहः। जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभिः, यद्यस्य न भवे स्तंभस् तत्रायं मदनुग्रहः। जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभिः, यद्यस्य न भवेत् स्तंभस् तत्रायं मदनुग्रहः। जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभिः, यद्यस्य न भवेत् स्तंभस् तत्रायं मदनुग्रहः। जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभिः, यद्यस्य न भवेत् स्तंभस् तत्रायं मदनुग्रहः। मतै पंगुं लंगयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणी परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यदेवं। हरे कृष्ण। श्लोक में बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षिका बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। इसी श्लोक का कुछ महीने पहले परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज वृंदावन में क्लास दे रहे थे। उन्होंने बता रहे थे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इस प्रकार नवविधा भक्ति है, उसमें आत्मसमर्पण सबसे लास्ट में है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सब होने के बाद आत्मसमर्पण होगा, आत्मसमर्पण पहला भी हो सकता है। तो बलि महाराज के लिए आत्मसमर्पण पहला प्रोसेस था, विधि भक्ति, ये जो भक्ति का अंग जो है आत्मसमर्पण। तो भगवान तो छल करके बलि महाराज का संपत्ति का हरण कर लिए हैं। और ये जो लीला हो गया है, ये जो लीला भगवान के अंतर्गत जो भगवान ने ये लीला कराया है, ये छल का जो भगवान के जो छल है उसमें अत्यंत हाईएस्ट जो बोलते हैं, जैसा कि वात्सल्य भाव में, वात्सल्य लीला में दामोदर लीला है, अत्यंत उच्च कोटि का है। हमको वात्सल्य भाव में दामोदर लीला सबको मन आकर्षण करता है। उसी प्रकार माधुर्य रस में रास लीला एकदम उच्च कोटि का है। तो इसी प्रकार इस छल लीला में कपट करने में ये जो बलि महाराज का है एकदम उच्च कोटि का है। तो इसको हम तीन प्रकार इसको हम विभाजन करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड इसके, तो बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पौत्र थे, असुर कुल में इनका जन्म हुआ है। बलि महाराज ने दोनों इनके जो पितामह जो थे हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष, जो भगवान के विरोधी थे, भगवान के शत्रु बन गए थे, और प्रहलाद महाराज भगवान के उच्च कोटि के भक्त, ये दोनों स्थिति को देखे थे और ये विशेष है कि खास करके बलि महाराज हमेशा असुरों के संग में रहते थे और असुरों जैसा ही उनका व्यवहार रहता था। तो एक बार जब समुद्र मंथन हो गया, समुद्र मंथन के बाद अमृत देवतागण को अमृत मिला और बहुत शक्तिशाली बन गए, और असुरगण को अमृत नहीं मिला। तो ये दोनों में बाद में इंद्र, राजा इंद्र ने सारे अपने शक्ति से असुरों के ऊपर आक्रमण कर लिया और सारे असुरों को उन्होंने मार डाला, इतना कि बलि महाराज को भी मार डाला था। बलि महाराज मर गए थे लेकिन बलि महाराज के जो गुरु शुक्राचार्य बृहस्पति, उनको बृहस्पति भी कहला जाता है, भृगुवंशी है। तो शुक्राचार्य, भृगुवंशी शुक्राचार्य बहुत मेधावी है, तो भगवान बोलते हैं कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं, उष्णा भगवत गीता में बताते हैं कि भगवान के ये अंश है। और शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या जानते थे, उन्होंने जितने जो असुर है जिनका शरीर खंड खंड नहीं हुआ है उन सबको इकट्ठा करके उनको पुनर्जीवित कर दिया। कि ये कितना भागवतम में जिसका इतना वर्णन है, एक अभी अगर किसी को बताए तो ये कोई बिलीव नहीं करेंगे, इसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, ऐसा कैसा पॉसिबल है। लेकिन वैदिक वेदास में ये एक कला है कि डेड बॉडी को भी पुनर्जीवन जीवित करने का एक विद्या है, वो शुक्राचार्य जानते थे और उन्होंने बलि महाराज को पुनर्जीवित कर दिया। तो देखिए बलि महाराज अपने गुरु के प्रति इतना उनको रिस्पेक्ट आ गया कि करुणा है, जो आप हम समझ सकते हैं कि जो पुनर्जीवन दान दिया है उनके प्रति कितना रिस्पेक्ट होगा। तो उसके बाद बलि महाराज ने अपने सारे संपत्ति से उनका इतना सेवा किया शुक्राचार्य को, शुक्राचार्य और ब्राह्मणों का बहुत सेवा किया। तो शुक्राचार्य बहुत संतुष्ट होकर उन्होंने पूछा कि क्या चाहते हो, तो बलि महाराज ने बताया कि मुझे स्वर्ग के ऊपर कब्जा करना है। तो शुक्राचार्य ने ठीक है, उन्होंने एक विश्वजीत यज्ञ का सलाह दिया कि विश्वजीत यज्ञ करो। तो बलि महाराज ने विश्वजीत यज्ञ आरंभ किया और इस यज्ञ में अग्नि कुंड से, देखिए कितना शक्ति है शुक्राचार्य का, जो यज्ञ करने का जो उनके पास शक्ति है, उस शक्ति से बलि महाराज को बहुत कुछ संपत्ति मिल गया। यज्ञ कुंड से उनको सोने का, पूरा सोने का रथ मिल गया और अनेक वेपन्स मिल गए, उसमें आयुध मिल गए, और उनको इतना तेज बढ़ गया कि परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बताते हैं शुक्राचार्य ने अपना ही तेज को बलि महाराज में डाल दिया था और इतना तेजस्वी हो गए थे बलि महाराज, इतना शक्ति मिल गया तो उनको कोई हरा नहीं सकते थे, इतना प्रभावशाली बन गए। और जो असुर थे उनके साथ उनको भी शक्ति मिला। ये यज्ञ का वो तपोबल जो था उनको मिल गया। और प्रहलाद महाराज जी ने उनको एक हार पहनाया था, उस हार में जो फूल थे भागवतम में वर्णन है कि कभी सूखने वाला फूल नहीं है, और इतना तेजस्वी लग रहे थे और इतना पूरा शक्ति से। शुक्राचार्य बोलते हैं कि तुम स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करो, ये सही समय है। तो पूरा सैन्य के साथ स्वर्ग के ऊपर बलि महाराज आक्रमण कर दिया। तब इनका तेज को देखकर सभी देवी देवता, खास करके इंद्र, भगवान इंद्र ने सोचा कि हम इसको इतना तेज आ गया कि हम इसको मुकाबला नहीं कर सकते। तो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और वो बोलने लगे, राजा इंद्र ने बोलने लगे कि अभी तो बलि महाराज ऐसा तेजस्वी बन गए, मुझे तो इनको सामना करने का शक्ति नहीं है, तो ऐसा कैसा हुआ? तो बृहस्पति सब कुछ जानते थे, वो बताया कि देखो उनके गुरु का कृपा मिला है, तो अभी क्या करना चाहिए? तो अभी करना कुछ नहीं, यहां से भागो, तो अपने पत्नी और सबको छोड़कर तुम यहां से सब भागो। तो देवताओं के पास एक सिद्धि है, तो उन्होंने अपना अलग अलग वेश बदलकर स्वर्ग छोड़कर सब लोग भागे वहां से, पर गुरु बृहस्पति भी वहां से भागे, क्योंकि वो जानते थे कि शुक्राचार्य के जो शक्ति से बलि महाराज को ये स्फूर्ति और ना दिव्य शक्ति मिला है, अभी इनको कब्जा नहीं कर सकते। तो बाद में बलि महाराज ने पूरा स्वर्ग के राजा इंद्र का आसन को ग्रहण कर लिया और इंद्र बन गए। देखिए ये भागवतम में वर्णन है कि जब वो इंद्र बन गए और शासन करने लगे, तो आम जनता, दो स्वर्ग की जो इतर लोग है, वो बलि महाराज को बहुत अप्रिशिएट करने लगे, ये तो ऐसा शासन कर रहे कि इंद्र से भी बढ़कर है, इतना अच्छा शासन चल रहे थे। ये बलि महाराज का एक गुण है कि वो कब्जा करके उसको लोगों को तकलीफ नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने कब्जा कर दिया लेकिन ठीक ठीक से सब शासन कर रहे थे। तो एक्चुअली भगवान जो निर्मित किए थे, भगवान ने जो शासन बनाया था बलि महाराज को, इंद्र को जो राजा बनाए थे स्वर्ग का, और सारे जो देवताओं को अलग अलग डिपार्टमेंट नियमित किया था, लेकिन ये बलि महाराज जो है भगवान का जो शासन का उल्लंघन करे थे, उल्लंघन कर इस स्वर्ग के ऊपर कब्जा करे थे, ये भगवान का आज्ञा का उल्लंघन था। फिर भी जब इंद्र मां के पास गए, माता अदिति के पास जाके रोने लगे, को इतना सब संपत्ति इस असुर से हमने हार लिया और अभी हमको स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ा, हम क्या कर सकते, मुझे तो इतना शक्ति नहीं है, हम भली भांति उसके साथ अगर युद्ध भी किया तो हम जीत नहीं सकते। तो माता अदिति बहुत खिन्न हो गए, क्योंकि कोई भी माता को अपने पुत्र का संकट देके बहुत दुख होता है। तो माता ने सोचने लगी कि कैसे इस परिस्थिति से बाहर कैसा आने का। तो कश्यप मुनि जब आए तो उनसे प्रार्थना की माता अदिति ने, और कश्यप मुनि सोचकर हंसने लगे, भगवान का क्या माया है, देखिए बलि महाराज और इंद्र कश्यप मुनि का ही बेटे हैं, बलि महाराज अदिति से आए हैं, दैत्य कहलाते हैं, और इंद्र जो है माता अदिति से आए हैं, एक ही पिता है। तो माता बोलती है कि मुझे ऐसा कुछ आप सहायता करिए कि मेरे बच्चों को स्वर्ग वापस मिले। तब कश्यप मुनि ने उनको सलाह देते कि आप पयोरथ करो। तो पयोरथ करके माता ने भगवान को संतुष्ट करती है, 12 दिन का पयोरथ, इसी फाल्गुन महीने में पयोरथ हुआ था, और उससे स्वयं भगवान इंद्र के भाई बनकर, वामन देव बनकर, माता अदिति और कश्यप मुनि का पुत्र बनते हैं। ये बहुत ही सुंदर एक लीला है। भगवान छोटे बाल रूप धारण कर माता अदिति को संतुष्ट करने के लिए इंद्र का भाई बनकर आए, क्योंकि भगवान की जी की लीला इतना अद्भुत है। स्वयं भगवान जानते थे अगर मैं इस स्वर्ग को छिनकर इंद्र को अगर दे दिया तो क्या होता था, दोनों में फिर से लड़ाई होता था। और ब्राह्मण द्वारा इनको जो शक्ति मिला है, वैष्णव को ब्राह्मण को भगवान इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतना आदर है कि उसका उल्लंघन भगवान को नहीं करने का था। उस शक्ति बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, मैं भी उसका लड़ाई नहीं कर सकता हूं, इतना वैष्णव के लिए ब्राह्मण के शक्ति के ऊपर भगवान को इतना और कृपा है और विश्वास भी है। तो इसलिए कुछ ना कुछ छल करना चाहिए, छल कर एक सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं, अगर एक पिता है और दो बच्चे हैं, दोनों में आपस में झगड़ा है, तो कुछ ना कुछ छल कर वो झगड़ा मिटाते हैं। हमको मैनेजमेंट में एक स्टोरी बताते थे कि न्याय कैसा करना चाहिए। एक छोटा स्टोरी बताते, एक पिता है और दो बेटे थे, दोनों बेटे अपने आपस में लड़ते थे कि अगर कुछ भी चीज घर में लाए तो दोनों में झगड़ा होता था कि मुझे ज्यादा चाहिए। छोटा बोलेगा तो मैं छोटा हूं, मुझे ज्यादा चाहिए। अगर एक फल लाया तो मुझे ज्यादा चाहिए, तो हमेशा ये लड़ाई होता था घर में। तो एक बार पिता ने एप्पल लाया, एक बड़ा सा फ्रूट्स एप्पल लाया, तो छोटे वाले बोलने लगा नहीं मुझे पूरा चाहिए। बोलने लगा अरे वो भी भाई है, उसको भी आधा दे दो। नहीं नहीं मुझे सब कुछ। फिर वो बोलने लगा मुझे ज्यादा चाहिए। तो पिता ने एक एक सलाह दिया कि देखो तुम दोनों में इसमें एक जन फ्रूट को कट करो और दूसरा जन सिलेक्ट करो, कोई भी दोनों में से एक जन कट करने का और दूसरा सिलेक्ट करने का, दोनों में बराबर नीति बराबर है। तो बड़ा वाला चिका ठीक है मैं कट करूंगा। जब कट किया, अगर छोटा बड़ा किया तो छोटा वाला बड़ा वाला लेगा, है ना। तो इसलिए वो क्या किया, बराबर कट कर लिया और दोनों बराबर है और छोटा वाला जो एक उसमें चूज किया। तो उस प्रकार सामान्य तो अपने जीवन में देखते हैं कि पिता बच्चों को ठीक ठीक रखने के लिए न्याय बनाते हैं, तो ये तो परम पिता है। तो इनका न्याय ऐसा था, छल कर बलि महाराज को भी उसको भी संतुष्ट करना है और इंद्र को भी संतुष्ट करना है। तो इसलिए वामन भगवान के ये बहुत सुंदर लीला भगवान ने रचाया। वामन अवतार में बलि महाराज, हाँ उस समय जो पहले विश्वजीत यज्ञ हो गया, फिर उसके बाद स्वर्ग को कब्जा करने के बाद शुक्राचार्य, देखिए कितना बहुत विद्वान है शुक्राचार्य। महाराज जी कहते थे कि शुक्राचार्य की जो नीति है ये भारत में बहुत सुप्रसिद्ध नीति है। उन्होंने महाराज जी ने लल्लू प्रसाद यादव को मिले थे और उस पॉलिटिक्स में उन्होंने कहा था कि शुक्राचार्य का नीति को अपना लो, भारत का पंत प्रधान को अगर शुक्राचार्य नीति अपनाते थे या भारत के पूर्व जो लीडर्स थे शुक्राचार्य नीति अगर अपनाते थे तो शायद ब्रिटिश लोग भारत के ऊपर कब्जा कर नहीं सकते थे। ये महाराज जी अनेक बार बताए कि शुक्राचार्य बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने सोचा कि बलि महाराज ने जो स्वर्ग के ऊपर कब्जा किया है ये अविधि है, यानी भगवान का आज्ञा का उल्लंघन करके स्वर्ग के ऊपर कब्जा किया। तो इसे क्योंकि इंद्र बनना अगर है तो सब अश्वमेध यज्ञ करना जरूरी है, तो इसलिए बलि महाराज को आज्ञा दिया कि तुम अश्वमेध यज्ञ करो। तो 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ था। तो सौ यज्ञ के अश्वमेध यज्ञ के समय वामन भगवान वहां पर आए और भीख मांगा बनकर इंद्र का पार्टी में भीख मांगा बनकर अपने भाई के लिए तीन पग जमीन मांगने के लिए बलि महाराज के यहां आए थे और बलि महाराज इनके जो गुण का वर्णन किया है असुर होते हुए भी। बलि महाराज हम जानते हैं कि 12 महाजनों में से एक है और सत्य निष्ठा औदार्य और भगवत प्रेम इसका निरूपण करते हैं बलि महाराज। तो बलि महाराज बोलते हैं कि आप ब्राह्मण हो और मेरे पास यज्ञ के समय में आए हो तो आपको क्या चाहिए मांगो। तो भगवान बोलते हैं मुझे 3 पग जमीन दे दो। तो ये सब लीला हम सुन चुके हैं कैसे भगवान, ये कोई भी अगर सामान्य व्यक्ति को समझ सकता था कि कोई आया है तो छल करने के लिए, फिर भी बलि महाराज इस जब उनको समझ गया कि ये स्वयं भगवान विष्णु है, हालांकि जैसा हम पहले चर्चा किया कि वो दोनों देखे थे कि इनके पितामह भगवान के जो भक्त भी थे और पर पितामह हिरण्यकश्यपु वगैरह शत्रु भी थे, दोनों देखे थे। तो जब इनको समझ गया कि ये भगवान विष्णु है, शुक्राचार्य बोलते हैं कि मत दे दो, ये भगवान है छल करने के लिए आया है, तुम्हारा संपत्ति सब हरण कर लेगा, तो तुम राजा हो, तुम थोड़ी भीख मांगा बनने का है, तो तुमको राज करना है, थोड़ा बहुत रखो, थोड़ा बहुत दे दो, इस समय तुम झूठ बोला तो भी चलता है, क्योंकि वो नीति बताते हैं अपने शरीर संपत्ति को रखने के लिए अगर कोई झूठ बोलता है वो चलता है, ऐसा उन्होंने नीति बताया। लेकिन बलि महाराज सत्य निष्ठा और उनको औदार्य जो था, मैंने तो ऑलरेडी इनको वचन दे दिया हूं तुम जो मांगो मैं दे दूंगा, तो शुक्राचार्य बोलते थे तुम्हारा सब कुछ हरण कर लेगा, ये विष्णु है तुम्हारा शत्रु है। तो फिर भी गुरु का आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन कर दिया। अगर ये भगवान विष्णु है, मैं जानता हूं भगवान विष्णु का ख्याति, और वो अगर मुझे हरण भी कर लिया फिर भी मेरे लिए ठीक है, तो गुरु को उन्होंने त्याग कर दिया। देखिए वही गुरु जो उनको पुनर्जीवन दिया था, वही गुरु के आज्ञा के आदेश के अनुसार स्वर्ग मिला था, और आज भगवान के लिए उसी गुरु का आज्ञा का उल्लंघन कर रहे बलि महाराज। ये भगवत प्रेम उनको ऐसा स्फूर्ति मिला, ये भगवान का ही सब लीला था, ऐसा स्फूर्ति मिला जिससे वो इस तरह व्यवहार कर रहे थे। और भगवान ने बलि महाराज को 3 पग नापने के लिए बलि महाराज ने बोला कि ठीक है तुम 3 पग ले लो जमीन। तो 3 पग नापते नापते उन्होंने पूरा तीनों लोकों को भगवान ने नाप लिया, और बलि महाराज आखिर में समझ गया कि ये भगवान कितना अद्भुत है। हे भगवान, आप तो तीनों जगत का स्वामी है और ये सब विश्व आपके भीतर है, लेकिन मैं जो इस तीनों लोक के ऊपर कब्जा किया था, और तीनों लोक के जो ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य से जो ऐश्वर्य कमाने वाला बड़ा होता है, इसलिए आप 3रा पग जो है मेरे सर के ऊपर रख दीजिए। तब उनके पत्नी विंध्यावली, ये बहुत महान एक पर्सनालिटी है विंध्यावली, तो जब भगवान आए थे भगवान का चरण को धोने के लिए बलि महाराज निकले थे, स्वयं यही विंध्यावली अपने घर के अंदर जाकर सोने का घड़ा लेकर आए थी, सोने का बर्तन लेकर भगवान का चरण को धोने के लिए बलि महाराज को प्रेरित की थी। और जब बलि महाराज अपने शरीर को अर्पण कर रहे थे कि मेरे सर के ऊपर आप 3रा पग रख लीजिए, तब विंध्यावली अपने पति बलि महाराज को भी वस्त्रित किया। ये देखो भगवान पूरा विश्व में, ये जो विश्व आपका लीला के लिए रचा है, आपके सुख के लिए रचा है, लेकिन बद्ध जीवात्मा समझता है कि मैं इसके ऊपर कब्जा करो, काबू करो और मैं उसको एंजॉय करो, ऐसा सोचता है। अपना पति को भी उसने डांट लिया। बहुत सुंदर प्रार्थना है। तो इसके बाद बलि महाराज भगवान ने बुलाते को तुम तो तुम्हारा आज्ञा का उल्लंघन किया, तीसरा पैर तुम जो बोला था तीन पैर जमीन दे दूंगा, कहां है तुम्हारा तीसरा पैर जमीन दे दो, तुम झूठ बोलता है, तुम वरुण पास से उसको बांध लिया। देखिए बलि महाराज जो स्वर्ग के राजा थे उसका पूरा संपत्ति निकल गया है, उसके सारे रिलेटिव्स जो है उनको वस्त्रित किया है, अपनी पत्नी और बहन भी थी रत्नमाला वो भी उनको तिरस्कार करने लगे। गुरु तो उनको शाप दे दिया, बलि महाराज को बोला था मत दे दो, गुरु का आज्ञा उल्लंघन करने से गुरु ने शाप दे दिया, तुम संपत्तिहीन हो जाओ। फिर भी बलि महाराज भगवान का ये जो लीला का स्मरण करके बहुत उनको प्रशंसा कर रहे थे। तब प्रहलाद महाराज जी आए तो भगवान को स्तुति करने लगे, माय लॉर्ड हाउ वंडरफुल इट इज, आप किसी से कुछ छीनते हैं ये कितना अद्भुत है, और आप किसी को कुछ देते हैं वो भी कितना अद्भुत है, आपका दोनों जो व्यवहार है सम है। तो भगवान को इस तरह प्रार्थना कर रहे थे। तो फिर पाश वरुण पाश उनको बांध लिया, और इसके बाद जो लीला है ये बहुत अद्भुत लीला है। भगवान बताते यश्याहम अनुग्रहनामि हरिष्ये तदधनम, जिसके ऊपर कृपा करने के लिए उसका सारा संपत्ति को मैं हरण करता हूं, और उसके बाद उसके सारे जो रिलेटिव्स है संबंधी है उसको तिरस्कार करेंगे, तब वो मेरे पास आकर मेरा शरणागति लेगा, ये भगवान का कृपा है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं इस प्रपट में ये कोई बड़ा कृपा नहीं है, संपत्ति हरण करना कृपा नहीं है, इतना बड़ा कृपा नहीं है, लेकिन सब कुछ देकर भी अगर वो व्यक्ति को घमंड नहीं आता है, ये अगर स्थिति भगवान देते हैं तो ये बहुत बड़ा स्पेशल मर्सी है, बहुत ही विशेष कृपा है, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो बलि महाराज के ऊपर भगवान किस तरह विशेष कृपा किया है वो इस श्लोक में आज हम देख रहे हैं। तो भगवान बताते हैं जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धनादि भी यद्यश्च न भवेत् स्तंभस तत्रायम मदन अनुग्रह। यदि कोई मनुष्य उच्च कुल में जन्म हो, यदि वह अद्भुत कर्म करे, यदि वह तरुण हो, यदि उसके पास सौंदर्य उत्तम शिक्षा तथा प्रचुर संपत्ति हो, और यदि वह इतने पर भी अपने ऐश्वर्य पर न इतराए तो यह समझना चाहिए कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज बोलते कि वन जब आदमी के पास संपत्ति आता है, if that opulence goes into the pocket it is okay, but if it goes to the head it creates a problem. Sampatti aadmi ka sar ke upar chadh liya to ye bahut bada vipatti hai. To isliye bhagavatam mein jitne sare mahan bhakt hai bhagwan se yahi prarthna kiya hai, hey bhagwan hum sampatti ka kamna nahi karenge, hum swarg lok ka kamna nahi karte hain, हम आपके भक्त आपको अगर देना ही है तो आपका भक्तों का संग दे दो। तो कुंती महारानी भी अपने प्रार्थनाएं में बताते जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर एद मान मदपुमान न एव अर्हति अभिदा तुम वैत्वाम अकिंचन गोचरम। जन्म उच्च कुल में जन्म संपत्ति ऐश्वर्य और उच्च शिक्षण सौंदर्य ये सब अगर एक व्यक्ति के पास होता है, हे भगवान आपको वो विनम्रता पूर्वक आपका नाम को नहीं पुकार सकता है, आपका शरणागति उस प्रकार नहीं लेता है जो एक अकिंचन व्यक्ति ले सकता है, ऐसा कुंती महारानी भी बताती है। और प्रहलाद महाराज जी अपने प्रार्थना में बताते हैं तो प्रहलाद महाराज जी का बहुत सुंदर प्रार्थना है इसी संदर्भ में कि किस प्रकार व्यक्ति को संपत्ति और ये सारे जो ऐश्वर्य है तो किस प्रकार उसको मदांध बनाते हैं, जैसा कि गजराज, तो गजेंद्र, गजेंद्र के पास क्या था? न संपत्ति था, न उसके पास सौंदर्य था, एक प्राणी है, और न उसके पास कोई उच्च शिक्षण था, सारे इसके सगे संबंधी उसको छोड़कर गए थे, हजारों साल तक उस ग्रह के साथ युद्ध करके पूरा क्षीण हो गया था। अकिंचन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है गजेंद्र। तब उन्होंने किस भाव से भगवान को पुकारा, भगवान संतुष्ट होकर उसको कृपा कर दिया। तो प्रहलाद महाराज जी बताते हैं कि ये सारे संपत्ति, श्रुति, विद्या, सौंदर्य, इससे भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन गजेंद्र जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिस प्रकार उन्होंने भगवान को संतुष्ट किया है, ये सामान्य रीति से व्यवहारिक दृष्टि से अगर संपत्ति होने के बाद व्यक्ति को घमंड आता है, ये तो एक व्यवहारिक दृष्टि है, लेकिन भगवान का एक अगर विशेष कृपा से जो व्यक्ति संपत्ति, सौंदर्य सब होने के बावजूद भी उसके पास अगर घमंड नहीं होता है, तो भगवान कहते हैं कि ये मेरा विशेष कृपा है। भागवतम में अनेक ऐसा उदाहरण है, जैसा कि ध्रुव महाराज के पास इतना संपत्ति मिला था, करोड़ों करोड़ों साल तक वो संपत्ति का, वो राजा बनने का वरदान मिला था। एक बार कुबेर ने ध्रुव महाराज को वर मांगने के लिए पूछा, मैं आपको इतना संपत्ति दे सकता हूं, आप जो चाहिए वो मांग लीजिए। तब ध्रुव महाराज ने संपत्ति नहीं मांगा, आपको अगर देना ही है तो भगवान के चरणों के प्रति मेरा भक्ति कायम रहे, ये वरदान दीजिए। उसी प्रकार अम्बरीश महाराज पूरा विश्व के राजा थे, लेकिन भगवान के चरणों के प्रति उनको इतना भक्ति और आसक्ति था, इस सारे संपत्ति को एक पत्थर के टुकड़ा समझते थे। ये सारे ऐश्वर्य जो है नश्वर है, वो जानते थे इनके ऊपर भगवान का विशेष कृपा था। भगवान इनका संरक्षण के लिए स्वयं अपना सुदर्शन चक्र दिए थे। इस राजा होकर भी इनके पास बिल्कुल घमंड नहीं था। तो यहां पर बलि महाराज को इस घमंड से बचाने के लिए भगवान ने ये लीला कर ली, उसका संपत्ति हरण करके उसको भक्ति प्रदान किया। और इस लीला से भगवान के ऊपर एक कलंक लगा कि भगवान ने छल करके बलि महाराज का संपत्ति हरण कर लिया। देखो, अपने शरणागत भक्त का भगवान ने बांधकर सुतल लोक को भेज दिया, ऐसा भगवान को कलंक लगा सामान्य दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा कृपा, भगवान ने पूरा अपना डिपार्टमेंट को, मर्सी का जो डिपार्टमेंट है वो खोल दिया था बलि महाराज के ऊपर। तो बलि महाराज को आगे हम देखते हैं, उसको बांधकर सुतल, फिर वरुण पाश को निकालकर सुतल लोक को भेज दिया। सुतल लोक विश्वकर्मा द्वारा उसको बनाया था भगवान ने, और ये सुतल लोक स्वर्ग से भी ज्यादा संपन्न है, स्वर्ग से भी ज्यादा इसमें संपत्ति है, जो देवी देवताओं को भी दुर्लभ है सुतल लोक, ऐसा भगवान बताते हैं। उस जगह पे बलि महाराज को भगवान ने भेज दिया। और ये जो है सिर्फ टेम्पररी गिफ्ट है, केवल कुछ साल तक तुम इधर रहो, उसके बाद तुम स्वर्ग का राजा बनोगे, जब सावर्णी मनु में तुम स्वर्ग के राजा बनने वाले हो। तो भगवान ने बलि महाराज को बोलते हैं कि तुम सुतल लोक चलो, सुतल लोक देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा स्थान में मैं तुमको भेज दूंगा। बलि महाराज बहुत खिन्न थे कि हे भगवान, आपके चरणों को छोड़कर मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूं, उस भाव था उनको। बोले वहां जाकर मुझे डर यह बात का है कि मैं फिर से अपने असुर के साथ रहकर घमंड बन जाऊंगा, और अगर असुर लोग आपके चरण प्राप्ति होने के बाद असुर लोग अगर मेरा बात नहीं मानते हैं तो फिर से मैं मेरा पतन होगा। तो इसलिए बलि महाराज डरते थे, लेकिन भगवान ने इनको आश्वासन दिया आगे के श्लोक में कि बोले तुम सूतल लोग जाओ और वहां मेरे सुदर्शन तुम्हारे साथ रहेगा, कोई तुम्हारे जो साथी है असुर लोग तुम्हारा बात अगर नहीं सुनते हो या तुम्हारे ऊपर आक्रमण करते हो, मेरा सुदर्शन उसका व्यवस्था करेगा। और जैसा कि इस सामान्य रीति से हम देखते हैं, किसी व्यक्ति को समझो एक कंपनी में एक मैनेजर है, उसको मैनेजमेंट ने बोल रहा है कि तुम देखो इजिप्त जाओ यहां से और इजिप्त में कंपनी का मैनेजर बनो। तो अगर भारत छोड़कर इजिप्त जाना है तो इस व्यक्ति में तीन चार प्रश्न होता है। सबसे पहले इजिप्त जाना है तो क्या मेरा फैमिली लेके जा सकता हूं, और वहां जाने के बाद मेरा कंपनी कैसा रहेगा, एसोसिएशन कैसा रहेगा, ये दूसरा प्रश्न। मेरे बच्चों का स्कूलिंग कैसा रहेगा और मेरा सिक्योरिटी क्या रहेगा, ये चार प्रश्न होता है जनरली मन में। तो भगवान ने इसी तरह बलि महाराज को पूर्ण तरह से सुरक्षा दिया है। सबसे पहला तुम तुम्हारा फैमिली लेके जाओ, गो अलोंग विथ योर फैमिली, पूरा तुम्हारा फैमिली लेकर वहां जाओ सूतल लोक में, और मेरा सुदर्शन चक्र रहेगा जो तुमको सिक्योर करेगा। तो तुम असुर लोक में रहकर भी मेरे भक्ति में स्थापित रहोगे, यह बहुत बड़ा कृपा है। इतना सब होने के बाद इसलिए भगवान ये बता रहे हैं कि जिसके पास संपत्ति सब होने के बावजूद भी अगर घमंड नहीं होता है तो ये मेरा विशेष कृपा है। इसलिए ये श्लोक भगवान बता रहे हैं कि आगे होकर इनको सूतल लोक भेजकर सब संपत्ति देकर भी आश्वासन दे रहा है कि तुम घमंडी नहीं बनोगे, तुम मेरा भक्त बने रहोगे। ये बहुत बड़ा विशेष कृपा है। और वहां रहकर तुम, मैं खुद आऊंगा तुमको एसोसिएशन देने के लिए, मैं खुद रहकर तुम्हारा संरक्षण करूंगा। कितना बड़ा इनके ऊपर भगवान ने कृपा किया है। और इस भगवान के लीला में, हालांकि हम लोग बोलते हैं कि भगवान ने छल किया, इसमें छल का बलि महाराज का इतना बड़ा भंडारा खुल गया है। तो ये भगवान का कृपा है, बहुत विशेष कृपा है कि संपत्ति आने के बाद भागवतम में अनेक जगह पे इसका वर्णन है। इंद्र चंद्रदेव ने, चंद्रमा ने, ब्रह्मा जी चंद्रमा को इस पूरा विश्व का जो पेड़ पौधे है, औषधि है, इनके राजा इनका राजा बनाया। ब्रह्मा जी स्वयं इनको इस पद दिए थे, और चंद्रमा को जब इस पद मिल गया तो इनको इतना घमंड आ गया कि मैं पूरा विश्व का जो पेड़ पौधे उसका राजा हूं, औषधों का राजा हूं। तब स्वयं उन्होंने उस घमंड में, उस स्थिति में स्वयं अपने गुरु के पत्नी देवी तारा को हरण कर लिया कि देवता होने के बावजूद भी इस संपत्ति कैसा व्यक्ति को पागल बना देता है। चंद्रमा को बाद में अगर इसका दुख हो गया, लेकिन उस समय संपत्ति आने के, पद और संपत्ति मिलने के बाद स्वयं गुरु के पत्नी को अपहरण कर लिया। तो इसी को लेकर बहुत बड़ा युद्ध भी हो गया, देवी और देवताओं में और असुरों में बहुत बड़ा युद्ध हो गया। असुर लोग सारे चंद्रमा के साथ, असुर लोग आए और देवता बृहस्पति के साथ आए, दोनों में लड़ाई हो गया। और हम देखते हैं उसी तरह राजा नहुष, ययाति के पिता, इस भूतल में बहुत बड़ा राजा, बहुत ही प्रभावी मेधावी राजा थे, पराक्रमी राजा थे, इनके गुण संपन्न थे, और इनके गुण और पराक्रम को देखकर जब इंद्र भगवान ने अपराध कर लिए थे और स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा, तब इंद्र का आसन को संभालने के लिए स्वयं देवता लोग आकर इसी राजा नहुष को स्वर्ग में बुलाए थे। देखिए, प्रारंभ में राजा ने बोला नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, वहां जाने के बाद मेरा मति बिगड़ जाएगा, ये खुद बोल रहे थे, मुझे मत दे दो। लेकिन फिर भी बाद में देवताओं का सेवा करने के लिए वो स्वर्ग चला गए, और स्वर्ग मिलने के बाद सब भूल गए। ये संपत्ति का एक बहुत बड़ा घातक है, संपत्ति मिलने के बाद व्यक्ति कैसा उसका मन बदल जाता है। तो नहुष राजा ने, इतना प्रभावी और मेधावी राजा, इस संपत्ति मिलने के बाद, इंद्र के आसन के ऊपर बैठने के बाद, उनको लगता है कि ये सारे मेरा कब्जा में है, इंद्र का जो पत्नी तारा है वो भी मेरा है, और कामांध होकर उस इंद्र का पत्नी के उन्होंने संदेश भेजा कि तुम मेरे साथ विवाह करो। तो ये तो बहुत सती तारा देवी ने बहुत दुखी हो गए, वो तो एक सती साध्वी थी, और वो जाके अगस्त्य मुनि को जाके प्रार्थना करती है कि मेरा स्थिति में, मेरा स्थिति से आप, इस स्थिति से आप मुझे संरक्षण दे दो। तो ये देखकर अगस्त्य और सप्त ऋषियों ने देखा, देखो संपत्ति किस तरह व्यक्ति को मदांध पागल बना देता है। तो उन्होंने एक योजना रचाया कि आप दुखी मत हो जाओ, हम जैसा बोलेंगे आप उस प्रकार करो। राजा नहुष को बोलो कि अगर आप मुझे पत्नी बना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा। ये सब अगस्त्य मुनि ने उसको सिखाया था कि तुम पालकी में बैठकर मेरे घर तक आना चाहिए, और इस पालकी को सप्त ऋषि जो है वो सब मिलकर इसको ढोलना चाहिए। ये ऋषिगण बताए थे तारामती को, और तारा देवी ने उसी प्रकार नहुष राजा को बोला कि अगर आप चाहते हो मेरे साथ शादी करना तो आपको एक काम करना होगा, सप्त ऋषि आपके पालकी में ढोलते ढोलते आपको मेरे पास लेके आना होगा, तब मैं उसको स्वीकार करूंगी। तो नहुष राजा ने हंसने लगा, अरे इतनी सी बात है, और वैसा तो ये सारे सप्त ऋषि इनके कुछ काम नहीं है और बैठे रहते, ठीक है उनको ढोलने के लिए बोलूंगा मैं। देखिए, उस स्थान मिलने के बाद, मदांध होने के बाद व्यक्ति सब कुछ धर्म को भूल जाता है, और उन सबको बोला कि ऋषियों को बुलाया और उनको बोला तुम ये पालकी में मुझे लेकर वहां चलो। तो अगस्त मुनि ये पहले ही जानते थे, वो पालकी डोलने लगे। ये सब बेचारे ऋषिगण कभी ऐसा काम नहीं किया है, और उनको ये बहुत यानी बहुत ही बहुत बड़ा विपत्ति था उनके पास, उनके लिए। तो वो सब पालकी में नहुष राजा को बिठाकर डोलने लगे, और नहुष राजा इतना कामांध हो गए थे, को थोड़ा भी अगर इतना सहन नहीं था कि जल्दी जल्दी निकलो, तुम जल्दी निकलो, और ये तो बेचारे बड़े बड़े ऋषिगण है वो डोलने लग रहे, तो इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम जल्दी क्यों नहीं जाते हो, जल्दी जाओ, सर 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 बोलने लगे। तो फिर भी आपने ही मंत्री वो स्लोली चल रहे थे, तो नहुष राजा ने अपने पैर से अगस्त्य मुनि को लात मार दिया। कितना बड़ा, देखिए संपत्ति कैसा व्यक्ति को, पद और संपत्ति किस तरह पागल बनाता है। लात मार लिया, तब यही चाहते थे अगस्त्य मुनि, सभी को बोल दिया पालकी रखो नीचे, और राजा को उन्होंने शाप दे दिया, क्या सर सर सर्प जैसा कर रहे हो, जाओ सर्प बन जाओ, तुरंत सर्प बन जाओ। और जब सर्प बनने का जो शाप देते हैं, तुरंत नहुष राजा का शरीर सर्प बनने लगा, तुरंत उसी समय में वो ट्रांसफॉर्म होने लगा। तब नहुश राजा को स्मृति आता है तो उनके पैरों के ऊपर गिड़गिड़ाने लगते हैं, देखो इस संपत्ति का मदान कैसा है, हे भगवान मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा अपराध किया आपके चरणों के ऊपर, इतना मदान हो गया था, अपने आप को भूल गया था, कृपया मुझे आप इससे बचाइए। तो वैष्णव जन बहुत ही करुणामयी होते हैं और तुरंत उन्होंने उसका शाप जो है उसको विमोचन करने के लिए एक नीति बताया कि जब तुम एक अच्छे व्यक्ति के साथ तुम्हारा मिलन होगा, तुम्हारा संभाषण होगा, जिसके साथ आप बोलोगे, तब तुम्हारा इस सांप शरीर से मुक्ति मिलेगा। तो यही आगे होकर उस जंगल में युधिष्ठिर जी के साथ उनके मिलन हुआ और उनके साथ संभाषण हुआ, फिर भीम को पकड़े थे, फिर बाद में उनको उसे मोक्ष मिल जाता है। तो भागवत में अनेक संदर्भ में ऐसा कहा गया कि संपत्ति आने के बाद अगर घमंड आता है तो ये सामान्य है, ये कोई विशेष बात नहीं, लेकिन ये सब ऐश्वर्य होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने पद पर स्थित रहता है तो ये मेरा समझो, ये मेरा बहुत बड़ा विशेष कृपा है, उस तरह भगवान यहां बता रहा है। और यही आगे वो दिखाते हैं कि बलि महाराज को आश्वासन देते हैं कि तुमको ये सब संपत्ति सूतल लोक मिलने के बाद मेरा संरक्षण ऐसा रहेगा, तुम्हारे पद के ऊपर स्थित रहोगे, चिंता मत करो। और ये बहुत बड़ा उन्होंने कृपा दिया है। और ये वामन भगवान का सुप्रसिद्ध हुआ, भगवान ने अपने ऊपर कलंक लिया कि तुम छल कर बलि महाराज को, लेकिन भगवान को बहुत अच्छा लगता है ये सुनने के लिए। तो जयदेव गोस्वामी ये अपना दशावतार स्तोत्र में बहुत सुंदर इसी को वर्णन किया है।
छलयसि विक्रमने बलिमद्भुतवामन पदनख नीरज नितजन पावन, पदनख नीरज नितजन पावन, केशवद्रीता वामन रूपा, केशवद्रीता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
इतना सुंदर भगवान का वर्णन किया है। और उसी तरह एक राधा रानी जी भी भगवान को जब भ्रमर गीत में गुस्से होकर भगवान को रुष्ट होकर राधा रानी बता रहे, देखो ये जो कृष्ण है ना इसके ऊपर विश्वास मत रखो। भ्रमर गीत में बहुत सुंदर एक पद राधा रानी गा रही है गोपी, कि ये जो कृष्ण है मैंने सुना हूं पूर्णमासी माता से कि पिछले जन्म में ये राम नामक एक राजा था, और देखो राजा होते हुए भी क्षत्रिय होते हुए भी एक वाली को एक राजा को ऐसा मार दिया जैसा एक शिकारी एक प्राणी को मारता है, इसके ऊपर विश्वास मत रखो, ऐसा बोल रहे गोपियों को बोल रहे, वो भ्रमर को बोल रहे, क्योंकि राधा रानी ये लीला है, राधा रानी भगवान के ऊपर रुष्ट हो गई थी, इस कृष्ण के ऊपर तुम विश्वास मत रखो, देखो किस प्रकार बाली को इसने मारा, और देखो शूर्पणिका एक स्त्री एक क्षत्रिय राजा को आकर्षित होकर आई थी, और वो क्या मांग रही थी उसके साथ शादी करने के लिए, और ये राजा होकर उसको आश्रय देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसका नाक और कान काप लिया। और इतना भी नहीं, जब बलि महाराज के पास ब्राह्मण बनकर एक कपटी जो है ना वो गए थे, और उसके पहले उससे भिक्षा ले लिया, और देखो बाद में उसको ऐसा बांध लिया जैसा व्यक्ति एक कौवा को बांध लेता है, ऐसा बलि महाराज को बांधा था, इस कृष्ण के ऊपर विश्वास मत रखो, वो भ्रमर को बोल रही है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और प्रभुपाद जी ने इसको बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है कि इसको बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, इसको विजल्प बोलते हैं, अवजल्प बोलते हैं। जैसा प्रजल्प है, प्रजल्प यानी संसारिक भाषा में, संसारिक भाषा का जो चर्चा करते हैं उसको, ग्राम्य भाषा को, इसको प्रजल्प बोलते हैं। लेकिन जब पत्नी रुष्ट होकर अपने पति को गुस्से में बात करती रहती है, एक्चुअली ये प्रेम है लेकिन गुस्से से जब बोलती है तो इसको अवजल्प बोलते हैं। कि गृहस्थ जीवन में भी पत्नी अपने पति को डांटती रहती है और बच्चे के सामने बोलती है, देखो तुम्हारे पिता ना एक फूल लाने के लिए बोला तो गोभी लेके आता है ऐसा। तो ये राधा रानी ऐसा भगवान को किसी बलि महाराज का जो कपट लीला है इसको राधा रानी दौरा कर भगवान को अंकित कर रहे, तुम कैसे कपटी हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रखने का। बट फिर भी राधा रानी बोलते हैं, बट फिर भी क्या करे, ये भगवान का इसका जो लीला है इतना सुंदर है ना, इसका चर्चा बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसा राधा रानी बोल रही। तो इस बहुत ही सुंदर लीला में और आज का श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भगवान का जो एक्चुअल कृपा है, विशेष कृपा जो है, संपत्ति सब कुछ होने के बावजूद भी अगर व्यक्ति अपने पद पर स्थित है, घमंड नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ा एक मेरा मर्सी है। और संपत्ति जब हरण होता है, ये इतना कुछ ठीक है, कृपा है, उसको गलत रास्ते में जा रहा था, लाने के लिए भगवान ने एक छाटा मार दिया, ऐसा हो गया, ये भी एक कृपा है। लेकिन विशेष कृपा ये है कि सब कुछ होने के बाद भी अगर घमंडी नहीं बनता है तो ये बहुत बड़ा विशेष कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर कुछ गलती है इसमें से कृपया आप इसको करेक्ट कर लीजिए, और कुछ आप कमेंट कर सकते हैं। टाइम हो गया, कोई प्रश्न है तो। हमारे आदित्य बिरला में एक मेरा फ्रेंड था बंगाली, और बहुत ही विद्वान, यानी संस्कृत वगैरह जानता था लेकिन भक्त नहीं था। यानी वो ऐसा व्यवहार करता था कि मैं नास्तिक हूँ। वो 14 साल में पूरा भागवतम, रामायण सब कुछ 14 साल में पढ़ा था, पूरा एक एक उसको मालूम था, बट फिर भी भक्ति नहीं करता था। और हमेशा ऐसा प्रश्न पूछता था कि उसको आप न्याय के द्वारा उसके साथ जीत नहीं सकते। और कभी हमारा मीटिंग में रहता था तो मुझे दो प्रश्न हमेशा पूछता था, तुम्हारे कृष्ण का भक्ति कर रहे हो, देखो तुम्हारे कृष्ण कितना कपटी है, भगवान राम ने यही वो बोलता था, तुम ये बताओ, राजा था राम और जब शूर्पणखा आई, वो बेचारी राजा को आकर्ष होकर आई थी, तो राम ने उसका नाक और कान क्यों कापा? अगर नई शादी करना है तो एक छोटा सा मार के भेजने का था, उसको पूरा बर्बाद कर दिया, ऐसा बोलता था। ये कैसा न्याय है, मुझे बड़ा। तो तब मुझे ज्यादा, मैं बोलता था वो तो भगवान है, तो भगवान है तो ऐसा काम करते हो पूछता था। तो ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति भी ऐसा नहीं करता है, देखो तुम्हारा भगवान ऐसा करता है। और दूसरा ये बोलता था कि तो राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल भगवान को उन्होंने पूरा गण्य व्यक्ति मान रहे थे, उनको पूजा करने के लिए सब बोल रहे थे, तब शिशुपाल में 4-5 वाक्य बोला है, वो उसको सब याद रहता था। वो बोलता था देखो ये यादव है, ये तो राजा भी नहीं है, और इसको कैसा बड़ा पद देने का, तो उसने जो बोला था वो सब ठीक है, तो उसको क्यों मारा, तुम्हारे भगवान ने उसको क्यों मारा। तो ऐसा 2-3 प्रश्न पूछता था। कि ना अभी रिसेंटली एक वृंदावन में एक भक्त बहुत सुंदर बता रहे थे, तो भगवान इतना कृपालु है, शूर्पणखा का नाक और कान क्यों कापा, भगवान ने उसका नाक और कान काप कर उसका इच्छा पूरा किया, वो अपना बनाया, शूर्पणखा को अपना बनाया ताकि वो और कहीं जा नहीं सके। उसके बाद में शूर्पणखा बोलते इतना दुखी हो गए कि मुझे राम नहीं मिला, पूरा अपने भाई का वध हो गया फिर भी वो राम के बारे में सोचती थी। बहुत सुंदर उसने शूर्पणखा ने जो राम का वर्णन किया है, ये बहुत सुंदर प्रार्थना है, उसका रूप का वर्णन किया है, उसके रूप के भगवान के रूप के ऊपर पागल बन गई थी। और शिवजी के पास जाती है तो शिवजी के पूजा करकर शिवजी को प्रसन्न करती है। शिवजी प्रकट होते हैं तो बोलते तुमको क्या चाहिए, तुमको वो जो राम है ना, मुझे बस एक बार उसके साथ शादी करना है। तो शिवजी इसको बोलता शूर्पणखा को बताते हैं तुम एक स्थान है, उस स्थान में जाकर तपस्या करने के लिए बोलते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुम तपस्या करो, वो विधि बताए हैं। तो 1000 साल तक उसने तपस्या किया शूर्पणखा ने। तो उसी शूर्पणखा को अगले जन्म में कुब्जा बनकर आई, तो वो सब जो लीला है ये शिवजी का कृपा से उसको ये मिला था। और भगवान 8 दिन तक उसी कुब्जा के घर में रहे और नो उसके साथ उसको पूरा संतुष्ट किया है, ये भगवान का कृपा है। उन्होंने बता रहे थे कि भगवान कान और नाक जो कापा वो कर उसने ब्रांडिंग किया, नाउ फ्रॉम टुडे यू आर माइन, मेरे हो, अपना बनाया, ये बहुत बड़ा कृपा है। भगवान सच्ची बहुत दयालु है और इसको समझने के लिए इसलिए भगवान बोलते भक्त्या माम अभिजान आती यावन यशस्वी तत्म था। तो सामाजिक दृष्टि से देखा तो भगवान के ऊपर बहुत कलंक लग जाते हैं, लेकिन भगवान बहुत बड़ा कृपालु है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।